हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं था, उसका भी कोई स्वार्थ नहीं था। प्रेम कैसे टूट गया बतला सकता है? उद्धव जी ने कहा, जी जन्म भर में हमने कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं सुना। इसका उत्तर क्या देंगे उद्धव? अद्भुत बात, बहुत बातें इनकी। पहले उद्धव जी ये कह रही हैं, देखो उद्धव तुम तो उसका उत्तर नहीं देगा, तुम्हारे लिए संभव पर नहीं मिलेगा। देखो मृगुरु कपिंद्रम दिव्य देह लुप्त धर्मा, तुम लौट जाओ मथुरा और कह देना जैसे आप यदि उनको छोड़ सकते हैं तो वो भी अपना प्रेम करना आपसे छोड़ दिया है। बड़ी आनंद से हैं, खाती पीती मस्त रहती हैं, अब आपको याद नहीं करती। देखो एक बहेलिया होता है, वन में शिकार करता है बंदरों का, बंदर का मांस नहीं खाया जाता, इससे कोई भी बहेलिया बंदरों का शिकार नहीं करता। बानर नर के समान है, उनको मारने से पाप लगता है, उसका मांस भी नहीं खाया जाता जैसे मनुष्य का नहीं खाया जाता। ये किसी जमाने में सुनते हैं या एक काला भी, ये तो द्वापर युग के काला है और एक काला था द्वापर श्वेता युग में, वो कहता था मैं दशरथ जी का पुत्र राम हूं किंतु था काला। वन में गया, वनवास करने के लिए गया, इतना अद्भुत रूप जो कहां नहीं जाए, राजकुमार का वेश छोड़ करके और वनवासी का वो बना लिया, अपने केस को बांध लिया और वनवासी बन करके चला। साथ साथ में उसकी पत्नी को भी ले लिया, वन में जा रहे हैं, अरे पत्नी की क्या जरूरत है, हराहा नहीं गए तो अपनी पत्नी को भी ले लिया, अपने भैया को भी ले लिया। अरे त्यागी बना है, वनवासी बनाया तो धनुष बाण की जरूरत है, धनुष बाण भी उस लड़का लिए, तलवार भी ले लिए, तब वनवासी होने की तुमको जरूरत क्या थी? अच्छा गया, अच्छा बंदर को किसने मारा? बंदर को तो कोई मारता नहीं, उसका मांस तो खाया नहीं जाता। बंदर ने क्या किया? अरे वो बंदर भी कामी था और ये भी कामी है ना, कामी कामियों में दोस्ती लगी। वो अपनी स्त्री के लिए तड़प रहा था, कौन? सुग्रीव। दो भैया थे सुग्रीव और बाली, दोनों में लड़ाई लगी किस लिए? स्त्री के लिए। स्त्री मैंने सुग्रीव की पत्नी थी तारा, को नजर पड़ी तारा पर बाली की, उनकी स्त्री को हरण कर दिया, घर से इनको निकाल दिया। ये राम का शरण में आया, प्रभु आप हमारी स्त्री को यदि मिलवा देंगे तो आपकी स्त्री भी तो कोई चुरा ले गया, मैं भी इसको खुजवा करके आपसे मिला दूंगा, ये दोनों के लिए शर्त रहे। राम ने कहा ठीक कहता है, मेरी स्त्री को कोई चुरा ले गया है, तुम पता लगा देना और तुम्हारी पत्नी को मैं बाली को मार करके मैं लौटा दूंगा। इन दोनों कामियों में बात थी। कौन कह रहा है? गोपिया कह रही है। किसको कह रही है? उस भ्रमर को कह रही है। बहाना है, बैठा हुआ है वो, उद्धव जी सुन रहे हैं विस्फारित ने, तो ऐसी बातें हमने कभी जीवन में नहीं सुनी जो ये गोपियां इस प्रकार से कह रही हैं। आगे कहने लगे, देखो इसके बाद में कहा तुम जाओ लड़ लो अपने भैया से। वो लड़ने गया, कहा मैं तुम्हारी सहायता करूं। बाली ने ऐसा उसे मारा, अधमरा होकर के आया, कहा आपने हमारी रक्षा नहीं की, मैं पहचान नहीं सका कि तुम में कौन बाली है कौन सुग्रीव। अच्छा ये माला देता हूं, ये माला अपनी दे दी, कहा अब जाओ लौट। पेड़ की आड़ से ऐसा बाण मारा जो उसको छत में लगी और वो गिर गया। उसने राम फिर गए उसके पास में, उसने पूछा आपने मुझे क्यों मारा? अपनी पत्नी के लिए ना, अरे तुमने हमसे क्यों नहीं कहा? रावण को तो हमने 6 महीने अपने कांख में बंद करके रखा था, वो हमसे लड़ने आया, मैं समुद्र में सूर्य के लिए पानी दे रहा था और उसी समय में वो लड़ने आया और मैं ध्यान करते करते और ऐसे ऐसे करते उसको ऐसे पकड़ लिया और अपने कांख में दबा करके जल देने लगा, तो उसने ना मुख से काटन आरंभ किया, तो मुझे ऐसा लगा जो कोई, तो क्या जुआ होता है ना, जुआ कोई काट रहा है, खुजलाहट आई तो उनको याद भी नहीं रही, 6 महीना हो गया ना, तो याद ही नहीं रही, थोड़ी सी खुजलाने लगा तो निकल करके भागा। तब से हमको गुरु मानता है, हमसे बहुत डरता है। मैं यहीं से आदेश देता जी, अरे राम सीता जी को लेकर के आ जाओ और राम को दे दो, हमारी बात को कभी भी नहीं वो ये कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। तुमने इस छोटी सी बात के लिए हमें हमारा वध किया, हमने तुम्हारा कौन सा पाप किया, कौन सा तुम्हारा हमने दोष किया? राम ने कहा, मैं ये जानता हूं यदि कोई मैया हो, कोई भाई की स्त्री हो, कन्या हो, इन सबको अपनी बेटी के समान समझना चाहिए। तुमने उनकी पत्नी को क्यों ले लिया, इसलिए तुमको मारा। अच्छा, इसलिए कर रहा है। फिर बाली ने क्या, सुग्रीव ने क्या किया, वो तारा को उनसे फेंक ले दिया, वही दोष किया जो सुग्रीव की पत्नी को वो ले गया था, अब ये इन्होंने बाली की पत्नी को रख लिया, वही दोष किया, किंतु इनको क्यों नहीं मारा? गोपियां उद्धव जी सुने, इसका उत्तर उनके सूझ बूझ में नहीं आ रही। वही काला, यही नहीं कहता है कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं स्त्रियों के अधीन नहीं, और अपनी स्त्री के कहने से एक सोने के हिरण को, जाओ इसका चमड़ा ले आओ, चमड़ा ले आओ। राम जी ने क्या करेगी, पहले उसको ले आओ, यदि वो जीता जी मिल गया तो उसके साथ में खेलूंगी, और जब हमारा समय हो जाएगा तो जब लौटेंगे तो कई कई मैया को ये उपहार देंगे, और यदि ये पकड़ में नहीं आए तो इसे मार करके इसका चमड़ा ले आना। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसा मत करो, ये माया है राक्षसों की, कोई विपत्ति आने वाली है, हिरण इतना सुंदर नहीं होता, किंतु वो कहां माने, नहीं माना। और अंत में सीता जी की चोरी है, इसके पहले एक शूर्पणखा उनको उनके पास में भेजा गया, स्त्री जाती थी उनके पास में आई, रावण की बहन, और राम के रूप को देखकर के आकर्षित हो गई, राम से विवाह करना चाहा। राम ने कहा कि हमारी तो विवाह है, हमारी तो पत्नी है सीता, तुम लक्ष्मण से शादी कर लो, इसकी पत्नी नहीं है। लक्ष्मण जी के पास में वो भी परम सुंदर, उन्होंने कहा कि मैं तो सेवक हूं इस प्रभु का, तुम यदि दासी बननी चाहती है तो यहां आओ हमारे पास, और रानी बननी चाहती है तो राम के पास में जाओ। एक रानी क्या, वो तो 360 रानियां, 1000 रानियां रख सकते हैं, तो तुम विचार कर लो। फिर राम के पास गई, राम ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा, क्रोधित हो गई, सीता को खाने के लिए दौड़ी, उसके नाक और कान को काट लिया। लक्ष्मण जी ने उनके कहने से, क्यों काटा, गोपियां पूछ रही हैं, क्यों काटा, काटने की जरूरत क्या थी, इतना सुंदर रूप लेकर के क्यों जाए ना, क्या जरूरत थी, और यदि कोई मुग्ध हो रहा है तो कह देते भाई अपनी स्त्री के अतिरिक्त मैं विवाह नहीं करना चाहता, तुम लौट जाओ, नाकान काटने की क्या जरूरत, इसलिए काटा एक सखी, मैं बतलाऊं किस लिए, इसलिए काटा, ये जीवन में किसी को दूसरे पति के साथ में, इसको कोई पति इसको ना चाहे, कोई पुरुष ही ना चाहे, इसे नाकान काट लो सदा के लिए। अरे सुना, एक और था सत्ययुग में काला, वो कौन, वामन रूप धारण करके आया था, तो बहुत लंबा चौड़ा, उसके पैर थे 1000 मील लंबे चौड़े, किंतु बन कर आया कैसा, काला है ना भीतर बाहर का, ये काले ऐसे ही होते हैं, तू भी उसी का दूत है। तो वो गया बलि महाराज के यहां और छल बल कल से कहा, मैं छोटा सा एक ब्राह्मण का बच्चा हूं, मुझे 3 हाथ जमीन चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। मैंने कहा, 3 क्या 4 5 6 मांग लो, 10 बीघा जमीन मांग लो, राजभवन बना देता हूं, सुंदर स्त्री से विवाह करा देता हूं, तुम्हें राज्य दे देता हूं, हाथी घोड़े सब ले लो। नहीं नहीं, मैं बहुत संतोषी जीव हूं, मैं ब्राह्मण हूं, बटू हूं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल चाहिए कितना, बस 3 पग जमीन, उसमें छोटी सी एक कोठरी बना करके भगवान का भजन करूंगा। अच्छा, बात तो लंबी चौड़ी करता है बुद्धिमानों का, किंतु अकल नहीं है, राजा ने कहा बलि महाराज ने, भाई अधिक मांगो, नहीं नहीं हमको जरूरत नहीं। अच्छा तो ठीक है माप लो। संकल्प पकड़ा दिया, जब मापने लगे तो क्या किया? अरे भाई मापो, बेईमानी मत करो। तुम बेईमानी क्यों करता है? ये काले बेईमान भी होते हैं। लंबा पैर बढ़ाया, एक पैर से एक डग से सारी पृथ्वी को माप लिया और दूसरे डग से तल तलातल पाताल रसातल से लेकर के भूर भुआ सह महाजनत पर सत्य तक एकदम पूरा एकदम माप लिया। कहा अब तीसरा पैर कहां रखूं, नहीं तो तुमको पाप लगेगा, अपनी बात पूर्ण करो। उन्होंने ये नहीं कहा, अरे बेईमान ये इतना लंबा पैर क्यों बढ़ा दिया? तुमने जितने छोटे होकर कहा तुम छोटे पैर से माप लो, उनकी लड़की तो बिगड़ गई। बामन जी का रूप सुनकर देख करके बड़ी पहले आकर्षित हुई, कहा ये मेरा बेटा हो जाता तो अच्छा था, अगले जन्म में हमारा बेटा हो। और जब देखा जैसे ये लंबे पैर बढ़ा करके हमारा पिताजी का सारा राज्य ले लिया तो बहुत बिगड़ गई। बोली अच्छा तू हमारा बेटा होगा, होकर के आओ, मैं तुम्हें बीष पान करा करके मार डालूंगी। तो ये कौन हुई? यही पुतना पीछे से हुई थी। तो वो ये उसने सारा राज्य ले लिया और लेकर के उनको बांध दिया नाग पास में। जैसे कौवे होते हैं, कौवा भी कैसा होता है? सफेद होता है ना, पक्का काला होता है, वो उनसे भी काला और चतुर नंबर एक, एक आंख होती है उसकी, दो आंख नहीं, कभी इधर से देखता है कभी इधर से देखता है। वो क्या करते हैं, यदि स्त्रियां हों उनको पहचान जाता है, पुरुषों के पास जरा आने से घबराता है। स्त्रियां कोई पकवान लेकर के सिर पर चली जा रही हो तो एक कौवा दस कौओं को बुला लेगा, जहां काव काव किया सब लोग आ जाए और सभी मिलकर के उसको भी खाएंगे और जो ले जा रहा है उसको भी ठुकराएंगे, यहां तक उसको गिरा देंगे और गिरा करके खाएंगे। ऐसा यही उसका सारा राज्य ले लिया और फिर उसी को बांध करके गिरा दिया। अब कावों से हमें कोई जरूरत नहीं, मानो भ्रमर गुंजार करते पाजे, स्वामी जी ऐसा मत कहें, आप ऐसा अनुमान कर रही हैं, वो तो बाहर भीतर आपके अतिरिक्त तो किसी को नहीं जानते हैं, यदि इतना ही वो खराब है तो उनकी बातें क्यों कर रही हैं आप लोग, क्यों कर रही हैं? और दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरी बात यही तो बात है, हम लोग उसको छोड़ सकते हैं तो उनकी कथाओं को नहीं छोड़ सकते। अंत में कहते हैं, अंतिम श्लोक क्या है ना, अंतिम अपिवत मधुपुर या आर्य पुत्राधुरास्ते, बहुत सी बातें हैं, समय बहुत अधिक हो जाएगा। अभी शुभानंद जी को श्रीमद भागवत बहुत कहना है, तो वो कह रहे हैं अपिवत मधुपुर या आर्य पुत्राधुनास्ते स्मरत से पितृ ज्ञान बंधुश्च सम बंधुश्च गोपान क्वचित अपि किंकरी नाम गृणीते भुजम अगर सुगंधम मुद्धन्ना भास्वर। कहे अंत में कहिए, अरे मैंने इस कृष्ण के दूध के साथ में हमने बहुत बुरी तरह से पेश आई, ऐसा नहीं हमको करना चाहिए, हमने ये पूछा भी नहीं है, तुम इतनी दूर से आ रहे जरा पानी तो पी लो, कृष्ण हमारे प्रियतम कैसे हैं ये पूछा नहीं, अरे दूध के साथ में से मीठा व्यवहार करना चाहिए, हमने उनसे किया नहीं, अब उनको सुधाई अब पूछ रही हैं। अभी वत मधुरी आर्य पुत्र आदमी, आइए आइए बैठिए पधारिए, बहुत दूर से आए, आप कहां चले गए थे? बीच में वो थोड़ा से कहीं चला गया था, कहां चले गए थे? हमारे रूढ़ वाक्यों से हमारे ऊपर में अप्रसन्न हो गए, हमारी चित्त वृत्ति अभी ठीक नहीं है, क्या बोलती हैं नहीं बोलती हैं ये हमारे ऊपर में अंकुश नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर में नाराज मत हो। हमारे आर्य पुत्र मधुपुरी में है, सुना था कि वो गए हैं विद्या लाभ करने के लिए अमंतिका में, सुना था कि बड़े निष्ठुर गुरु को पाया, त्रिपुंड धारण करने वाला, कोई उर्धपुंड धारण करने वाला विष्णु भक्त नहीं, और ये लोग बड़े निष्ठुर होते हैं, किसी पर दया नहीं होती, क्योंकि वो निराकार निरंजन निर्गुण होते हैं, कोई गुरु नहीं, किस पर दया करें किस पर क्या करें,
तो ऐसे गुरु के पास में चला गया। वो हमने कहा जूतापन करके मत आना, खड़वा खड़ा हुई मत पहनना, छतरी मत लगाना, दूध वूध मत खाना गैया का, गैया चराना गैया का दूध मत खाना, और खाता कसाई ये समझ लेना। ऐसा लिखा
वो हमारे इसमें है वृत्त दल एकादशी जैसा कर सकती हैं। जन्माष्टमी को जब तक जन्म न हो तब तक उपवास करती हैं, उसके साथ पानी भी नहीं पिया, और नहीं रह जाता है तो पानी है शरबत है और नहीं तो उसमें रामनवमी का दो पहर तक जरूर जब तक रहना चाहिए, इसके बाद में एकादशी जैसा। और चैतन्य महाप्रभु जी का भी है, उनका जन्म तब कर सकते हैं, उसके बाद में फल मिल जाएगा। एकादशी नृसिंह चतुर्दशी का शाम को उनका आविर्भाव होता है, शाम को मारा था हिरण्यकश्यप, इसलिए उस दिन सवेरे से हम लोग तो जलपान भी नहीं करते। यदि हो सके तो अच्छा, तुम लोग कर सकती है सब तो करते ही है, इन लोगों के लिए है तो लोग खाकर पानी पी लेंगे जिसको करना है, और उन लोग भी यदि होगा निष्ठा तो वो लोग भी कर लेंगे।
और वैष्णव के प्रति अपराध, गुरु चरणों में अपराध, भक्ति के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध, ये सब दूर हो जाने पर भी ये मान लेके दो लोग काम स्त्री के प्रति आसक्ति पुरुष के आसक्ति प्रतिष्ठा इत्यादि ये सब कुछ दूर हो गया भी तो चार चीजें उसके पीछे चलती हैं।
वो जल्दी नहीं फिर भी चार चीजें चलती हैं।
वो क्या चार चीजें हैं? पूर्व जन्म में आपने कुछ बुरे कर्म किए, बुरे कर्म किए हैं, जैसे किसी को आपने मार डाला, गाय को मार डाला, लोगों को अपमानित किया, कहीं आग लगा दिया, जीवों की हिंसा की, किसी तक को भी हिंसा इत्यादि की, ये दुष्कर्म होते हैं। ये दुष्कर्मों को करने से इस जन्म में उनका फल कुछ भोगना पड़ता है,
इस जन्म में
वर्तमान जन्म।
अच्छा,
मान ले कि आपने कहीं से दीक्षा हरिनाम भी ले लिया,
हाँ।
तो वो जब तक एक स्टैंडर्ड में नहीं पहुंच जाते तब तक भोगना पड़ेगा।
ओ,
कब तक? जिसमें नाम में आसक्ति रुचि आ जाएगी वो अपने आप जल करके खत्म हो जाएगी, किंतु जब तक रुचि इत्यादि नहीं आ जाती,
हाँ।
निष्ठा भक्ति में नहीं आ जाती तब तक ये आपको भोगना पड़ेगा, और ज्ञानियों को मुक्ति तक उनको भोगना पड़ेगा।
ओ,
तो इन दुष्कर्मों का फल कभी कभी ऐसा हो जाता है जो भक्ति में मन नहीं लगता, और उसी में ऐसा शरीर में कोई रोग हो गया, शोक हो गया, मोह हो गया, या किसी ने मार दिया, कुछ ऐसा हुआ तो भक्ति स्थगित रह सकती है। किंतु गुरु बल यदि हो और उनका संपर्क होता रहे, हरि कथा का जोर रहे, हरिनाम कीर्तन करता रहे, तो इसको पा।
क्या देवता भी इसमें बाधक बनते हैं?
देवता भी बाधक बनते हैं
भक्ति में, वो कैसे?
किसी स्थिति तक।
अच्छा,
जैसे नारद जी हैं,
हाँ।
नारद जी को देवताओं ने बहुत सा लोभ दिया भक्ति में बाधन करने के लिए। सुखदेव जी हरि कथा सुन रहे, भागवत की कथा सुनेंगे तो देवता लोग अमृत लेकर के पहुंच गए, ये अमृत उनको दे दीजिए और हम लोगों को भक्ति ये दे दीजिए, या और भी तरह से।
अच्छा,
जैसे कि
लोग
ये थे विश्वामित्र जी थे,
अच्छा,
तपस्या कर रहे थे,
अच्छा,
कुछ भगवत भजन करने के लिए भी,
अच्छा,
उन्होंने सोचा कि हमारा राज्य ले लेगा,
अच्छा, गौतम
तब वो ऐसा वेश धारण करके आकर के उनको तपस्या रख
दो मिल जाएगी। अच्छा, क्या भजन करने से
हरि कथा होने पर थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए, अभी अभी भक्ति भी प्रबल नहीं हुई है, भक्ति प्रबल होने पर ये आकर के भी कुछ नहीं कर।
अच्छा,
कुछ ऐसा हुआ है, आपने सब कर्म अच्छे किए हैं,
अच्छा,
उपकार किया है,
अच्छा,
गाय का दान किया है,
हाँ।
कहीं राज्य का दान कर दिया, अर्थ का दान कर दिया, किसी के ऊपर उपकार किया है,
हाँ।
तो इसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा, भोगने से ही हाँ। वो कभी कभी कहीं से धन आ गया, रुपया पैसा आ गया, आकर्षित लोग हो गए और उसको आप संभल नहीं सके, बस उसी में लगे रह गए, इसी को ही अपना मूल चीज मान लिया, भजन आपका दूर
हो जाएगा,
तो ये भी आएगा किंतु एक हद तक आएगा। जब निष्ठा होगी तो ये बहुत अंशों में दूर हो जाएगी किंतु अभी रहेगी। रुचि होने पर भी ये कुछ कुछ रहेगा, आसक्ति होने पर करीब करीब ये दूर हो जाएंगे किंतु अभी मरे हुए रहेंगे, रहेंगे किंतु मरे हुए। भावावस्था में भी, किंतु भावावस्था में भी यदि ऐसा कुछ हो और उद्दीपना जग जाए फिर भी जीत हो सकते हैं और आपको भक्ति से चूक कर सकते हैं, इसलिए उस समय तक खूब सावधानी से रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में नंबर आता है भक्ति उत्थ जो सुकृति। भक्ति उत्थ मैंने शुद्ध भक्ति तो किया नहीं, प्रहलाद की तरफ में, नारद जी की तरफ में, वो हरिदास ठाकुर की तरफ में आपने लोक प्रतिष्ठा के लिए कुछ भक्ति दी, देवताओं में देवियों में अपना रखते हुए भी राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं, एकाग्र होकर के चित्त को नहीं कर रहे, उसमें में प्रतिष्ठा की भी लालसा है
शायद बात,
और भक्ति के बदले कभी कभी जो भक्ति नहीं उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, उसमें कर्म या ज्ञान प्रधान रहता है और उसमें भक्ति रहती है, इसको कर्म मिश्रा या ज्ञान मिश्रा भक्ति अथवा प्रधानीभूत कर्म और ज्ञान रहता है।
अच्छा,
ऐसा करने से उनको भक्ति तो थोड़ा कर रहे हैं, हरिनाम भी करते हैं, किंतु वो जो है उसका फल कुछ है, जितनी स्त्रियां हैं पुरुष लोग हैं सब आकर्षित होंगे और इतना सम्मान देंगे, इतना पैसा रुपया और सब जागतिक चीजों को देंगे, ये आपके लिए संभालना बड़ा भारी मुश्किल है। उसको वही संभाल सकता है जिसको गुरु का बल है, सब समय हरि कथा हो रही है, सब समय निरंतर उसमें है, आने पर भी उससे कोई मतलब नहीं रह करके अपने गुरु के चरणों में वो सम्मान दे देगा, अपने आप नहीं मिलेगा,
नहीं मिलेगा।
जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये लोग आकर्षित होकर के आए, हमने इनकी श्रद्धा को एक जगह लेकर के और कहा ये हमारे अंदर में वो गुण नहीं है जो हमको होना चाहिए, ये मेरा कोई फल नहीं है, मैं तो एक साधारण गया बीता आदमी, गुरु जी के संग से उन्होंने जो कुछ हरि कथा और भक्ति दी उसके द्वारा ये सम्मान मिल रहा है, ये सम्मान गुरु जी को, मैं गुरु नहीं हूँ, ऐसी भावना को रख करके यदि करें, और नहीं तो आपका सर्वनाश कर देगा। और कुछ होता है अपराध,
अपराध
कुछ जानबूझ करके होते हैं, कुछ नहीं जानबूझ करके,
जैसे
जैसे देवताओं और दानवों में युद्ध होने पर इंद्र की विजय हुई, देवताओं की विजय हुई, अब बहुत बड़ा भारी एक वो क्या कहते हैं मजलिस या क्या होता है, अभिनंदन सभा, ये इंद्र को अभिनंदन किया गया और सभी लोग कह रहे थे इसमें इंद्र ने बड़ी बहादुर के साथ में असुरों को हरा, इसलिए इसका प्राप्ति जो ये है इन्हीं का अभिनंदन किया गया, बस बड़ा भारी सम्मेलन हुआ, जितने देवता लोग सब लोग उसमें उपस्थित हुए, गंधर्व उपस्थित हुए, सुंदर सुंदर मालाएं दे करके उनके गले में अर्पित की जा रही है और सभी लोग उसका गुणगान करते हुए चले गए। इतने में बृहस्पति जी आ रहे हैं।
अच्छा,
इंद्र ने सोचा ये गुरु जी ने सब मजाक किरकिरा कर दिया ये ना आते तो
अच्छा,
क्योंकि वो जब आएंगे तो हमको प्रणाम करना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे अरे इनको ये प्रणाम कर रहा था वही श्रेष्ठ है,
वही श्रेष्ठ है, समझ गया,
समझ गए,
समझ गया।
इसलिए इन्होंने सोचा जिसे ना आए वो बात वो समझ गए, तो गुरु है ना, अरे ओहो इसके अंदर में कुछ दूसरी बात है, बस वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान जब हो गए तो देवता असुरों को ये पता लगा कि अपने गुरु का इन्होंने अपमान किया है, अवज्ञा की है, बस इसी समय आक्रमण करो, इसी समय उनको जीता जाएगा।
हाँ सही है,
ये गुरु
तो गुरु का बल नहीं रहा ना,
अब गुरु का बल नहीं रहा,
हाँ,
अब गुरु जी का ध्यान, अब वो खोजते खोजते हार गए किंतु कहीं नहीं मिले, असुरों ने आक्रमण किया, जब गुरु जी नहीं मिले तब तो बड़ी दिक्कत, हमने बहुत बड़ा भारी अन्याय किया, तब उनको हरा करके राज्य ले लिया और कहाँ कहाँ वो घूमते फिरे, फिर ब्रह्मा जी के शरण में गए, तब उन्होंने फिर किसी अजय जाओ अपने गुरु की सेवा फिर से कर करके उनको मनाओ तब जाओ।
सही है,
तो ऐसे ही
अच्छा,
ये जानबूझ करके ठीक नहीं, उस प्रतिष्ठा की लालसा से गुरु जी की
अवज्ञा हो गया, इसी तरह से यदि शिष्य कोई समझता है अपने बल से मैंने ये किया और इतना प्रचार किया और इतने लोगों को भगवान की तरफ मिलाया और इसलिए इसका भोग बनाया था, अच्छी अच्छी चीजें देंगे तुम उसको ग्रहण करके और इसलिए
गुरुबल होना चाहिए, गुरुबल
निरंतर हरिनाम करना चाहिए, निरंतर भजन पर अग्रसर होना चाहिए त्याग और वैराग्य के साथ। जो कुछ आता है ठाकुर जी को दो,
सही
गुरु जी के दे दो, अपना ये मत समझो इसका एक पैसा भी हमारे भोग के लिए है।
बात मत
यदि अपने भोग के लिए होगा, सुंदर सुंदर अंगूर आए, सुंदर सुंदर आम आए और कुछ घटिया किस्म का अमरूद भी आए। अमरूद तो कहा जाए गुरु जी के घर से, गुरु जी से और ठाकुर जी के मंदिर में दे। अमरूद तो कहा जैसे इसमें अच्छे जो पके हुए लाल लाल जो सुंदर है ये हमारे घर में रहते हैं। तो ये क्या हुआ
गुरु जी के अभी कहते हैं,
हो गया ना,
समझ गया।
ऐसे वैष्णव के प्रति अवज्ञा यदि होगी,
सही है,
ये सब चीजें
देख हमारा जी वैष्णवों का पूर्वादि चरित्र जैसा वो उनके लास्ट में गुजरा उसको दोहराना चाहिए या नहीं?
कौन
जैसे उससे
वो व्यक्ति खुद ना दूसरा,
दूसरा व्यक्ति जैसे कोई पूर्वादि जन
इसको ऐसा समझो एक व्यक्ति आती हरिदास जी को पति बनाना चाहती थी, भी राजा के षड्यंत्र से। ये लोग इसका आदर करते हैं, भिखारी मुसलमान हिंदू भी नहीं, और कृष्ण कृष्ण करता है, बड़े बड़े राजा लोग हिंदू लोग उनकी घर के महिलाएं लड़कियां बूढ़ियां सभी उनको प्रणाम करती हैं।
हाँ
हाँ, इतना बड़ा भारी बदमाश, हमको इतना बड़ा भारी राजा कुछ नहीं करता इसको करते हैं।
हाँ,
एक बेचारे को फिर किया, तुमको इतने हजार रुपए देंगे तुम इसको लोगों की दृष्टि में
गिरा दो।
उसने कैसा किया, तीन रात किंतु निरंतर हरि नाम करते रहे। उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ नाम का प्रतिज्ञा की है, ये जब तक नहीं करना तब तक पानी नहीं पीता, अब मेरा वो होने वाला है तुम ठहर जाओ। करते करते तीन रात हरि नाम सुनाया, उसके हृदय की जितनी थी सब वो निकल गई, वो उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली जैसे आप हम पर कृपा करें, मेरी कृपा लोगी या तो हाँ, ये आश्रम तुम्हारा है, अब से ये तुलसी जी तुम्हारी है, अब इसकी सेवा करना, कोई चीज अपने पास में मत रखना, अपने घर में जो चीज संग्रह किया उसको सब तुम दान दे दो, एक पैसा मत रखो। उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया, ब्राह्मण लोग ले लिए बड़े प्रसन्नता से ले लिया, और एक कपड़े पहन कर उनके पास में आई, और प्रतिदिन वो 3 लाख हरिनाम करती। हरदास ठाकुर ने कहा कि जो खाने की जरूरत है बस एक बार खाने के लिए रखना, वो भी साधारण चीज, और सब लौटा देना, बस कपड़े लगते जो कुछ आता सब लौटा देती, और दिन रात हरिनाम करती, हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रणत रहती। अब बड़े बड़े साधु महंत लोग उसके दर्शन के लिए आते, यदि उसको कोई बेस्या मानेगा तो अपराध हो जाएगा,
अपराध हो जाएगा ना।
किंतु यदि कोई साधु का बेस ले लिया और उसकी आड़ में वैसा ही पहले जैसा कुछ कर रहा है जरा कम,
तो अपराध होगा,
तो फिर उस व्यक्ति का अपराध,
अपराध होगा। अच्छा महाराज जी,
भक्ति को धोखा देना,
धोखा देना
और किसी को नहीं, इसमें सावधान
रहना। अच्छा महाराज जी, क्या हरि भजन करने से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है?
हाँ बहुत जल्दी।
अच्छा,
जब निष्ठा के रूप में जब आएगी भक्ति, उस समय अपने आप उसके हवा से ही ये कर्म फल प्रारब्ध जितना सब दूर।
अच्छा महाराज जी,
तुनाम स्फुरणी न तत्ते ये कौन रूप गोस्वामी,
रूप गोस्वामी
शास्त्रों में ऐसा कहा गया, इसे सब विश्वास रखना। हरिनाम करने पर शुद्ध निष्ठा जब हो जाएगी, जब भक्ति लपलपाती नहीं रहेगी, सीधे स्थिर हो जाएगी नाम के आभार से, नाम करने की।
अच्छा महाराज जी, जैसे अभी मिड्डा जी हैं या और कोई भी है तो अभी भजन महामंत्र जाप करेंगे, ये निष्ठा नहीं है, और जैसे लहसुन प्याज का सेवन करते हैं या प्याज का धीरे धीरे नहीं छोड़ सकते, नाम भी छोड़ सकते हैं, नाम भी जाप करते हैं और छोड़ने की कोशिश भी करते फिर भी नहीं छूटता है, तो क्या उनको नाम जप करना चाहिए या उनको?
नाम जप तो अपना वो करता रहे, किंतु अभी गुरु जी इसको अभी हरिनाम नहीं देंगे।
अच्छा
नहीं देंगे, कहने जिससे अभी गले में माला ना ले लो और प्याज तो एकदम तुरंत छोड़ दो।
अच्छा,
शराब वराब मत लेना।
हाँ हाँ,
और तुम निष्ठा जब हो जाएगी तो मैं तुमको हरिनाम दीक्षा दूंगा।
सही है,
उनको बहुत उत्साह देना चाहिए।
अच्छा, उनको उत्साह तोड़ना तो नहीं चाहिए ना महाराज जी?
नहीं, वो हरिनाम करते चले अपना जैसा करते थे। किंतु अभी उस रूप में जो मंत्र है यदि देगा वो मंत्र तुमको चौपट कर देगा,
चौपट कर देगा,
तुमको चौपट करेगा, उनको नहीं।
अच्छा,
अनाधिकारी व्यक्ति ये नवा अपराध है,
नवा अपराध।
अनाधिकारी व्यक्ति को जिसमें भी नाम में पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं, उसको नाम देने से या मंत्र देने से यदि देगा तो तुम्हारा पतन हो जाएगा,
पतन गुरु का। अच्छा महाराज जी, एक बात और,
जैसे कभी तो भक्ति बहुत श्रेष्ठ चलती है और कभी फिर भक्ति में मंदता आ जाती है, तो क्या ये मतलब भक्ति जो है धंतरल घंतरल भक्ति हुई?
अभी अभी निष्ठा ही नहीं हुई, अनिश्चितता भक्ति,
अनिश्चितता भक्ति,
हाँ किंतु करना चाहिए,
करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे कभी कभी बहुत गहरी व्याकुलता आ जाती है, बहुत ज्यादा व्याकुलता आ जाती है, तो फिर क्या वो भक्ति का लक्षण है या नहीं है?
कैसी व्याकुलता?
जैसे व्याकुलता ये आ जाती है कि वास्तव में हम हरि भजन के लिए ही आए हैं, संसार में हमारा ये कोई कर्तव्य नहीं, ये तो सब नाटकबाजी है, यानी संसार के प्रति विरक्ति भाव होना,
ये भक्ति नहीं है।
अच्छा
क्यों?
हाँ
क्यों नहीं भक्ति है?
हाँ
अभी नेगेटिव है।
हाँ
मतलब भगवान के प्रति प्रेम की भावना ना,
अभी नहीं आई, दुनिया के प्रति निष्ठा नहीं आई।
हाँ हाँ,
ये तो विरक्ति उन चीजों के प्रति जो भक्ति के लिए बाधक
है, बाधक है।
अभी बाधक के प्रति अभी कुछ आकर के उसका मन व्याकुल हो रहा
है,
जिसमें भगवान के लिए व्याकुल है, जाए मैं भगवान को दर्शन नहीं करूँ, अब रहा नहीं जाए, आंखों के आंसुओं की धारा, ये व्याकुलता की जरूरत।
अच्छा,
और वो जो छोड़ने वाला है तो कुछ दिनों के बाद में मैंने व्याकुल तो हो रहा है किंतु हरिनाम नहीं करेगा, अब हरी कथा नहीं सुनेगा, तब फिर कुछ
पता ना जाएगा। अच्छा एक बात, अच्छा महाराज जी, जैसे भगवत कथा कहना और भगवत कथा में जैसे कोई रो रहा है, तो क्या ये शुद्ध भक्ति का आभास है या भक्त्यावास है, छाया भक्त्यावास?
कोई जरूरी नहीं है।
अच्छा,
इस व्यक्ति के
मनस्थिति
नहीं,
भक्ति के अधिकार, भक्ति की स्थिति बने।
यदि नारद ऋषि है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को एक जगन्नाथ जी की मूर्ति छोटी सी दिखला दो, क्या करेंगे?
वो तो उछल जाएंगे, रोने लग जाएंगे।
जो दिखला रहा है वो नहीं रोएगा।
हाँ।
वो कहेगा कि तो मैंने उनको ठगा दिया।
हाँ, ठगा दिया,
उनको ठग दिया।
हाँ, सही है,
किंतु महाप्रभु की ये ऐसी भावना है कि देखते ही बस उद्दीपना होगी और कृष्ण की उद्दीपना हो जाएगी।
सही है,
उसी तरह से ये भक्ति की स्थितियाँ हैं। कौन सी स्थिति में है वो? ये उस व्यक्ति के ऊपर,
व्यक्ति के ऊपर।
एक आदमी, एक गृहस्थ आदमी है, एक मोर पंखों को देखा और देख करके सोचा, अरे ये तो कृष्ण का वाला वही मोर है, और कृष्ण की लीला की स्मृति आई, थर नहीं सका, कंप और ये प्लक और रोमांच होया, वो जमीन पर गिर पड़ा।
सही है,
ये एक स्थिति ये भी है। तो इस तरह से वो कौन स्थिति में कैसा कर रहा है, अभी आभास है कि अपराध है कि क्या? अद्वैतवादी लोग जो है, निराकार मानने वाले, उनको भगवान का नाम कीर्तन करने से यदि आंख में आंसू आते हैं तो समझो ये प्रतिबिंब है,
प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब भाषा है।
और जो लोग भक्ति में चल रहे हैं और कभी कभी उनको ऐसा हो जाए, अभी भक्ति नहीं है, निष्ठा भी नहीं उत्पन्न है, कभी कभी आ जाए, कैसे आ जाए? कोई अभी मनुष्य का चित्त जो है अभी थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं, सरल होता है।
अच्छा,
स्त्रियों का चित्त बड़ा सरल होता है, वो भगवान की कथा सुन करके नहीं रोएंगे या रोएंगे? आप रो रहे हैं इसलिए आपको देख सकते हैं। समझ रहे हैं?
समझ गए, सही बोला महाराज जी। अच्छा महाराज जी, एक बात, एक सेकंड, एक पूरा नहीं कंप्लीट नहीं किया महाराज जी,
इस शक्तियों को समझने की चेस्ट।
समझ गए, समझ गए। अच्छा महाराज जी,
उसी स्थिति में है, कैसे क्या कर रहा है, आप लोग हम लोग अभी नहीं समझेंगे,
समझेंगे
हम लोग को थोड़ा सा, कितना दिन करते 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 थोड़ा सा हम लोग समझ जाएंगे, हम देखेंगे, अरे ये तो आदमी अभी सिगरेट पी रहा है और फिर अभी रो रहा है, तो इसका मतलब है ये अभी नहीं।
समझ गया,
ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो देखते हैं कि जो मुक्ति हमको ऐसे इतना परिश्रम करने से नहीं मिलती थी,
तो
थोड़ा सा भगवान का नाम करते ही मिल जाएगी, आनंद के मारे विवल हो गए।
अच्छा महाराज जी, जैसे कर्म
तो जैन धर्म में आके होते हैं।
अच्छा
ये समझो,
अच्छा
जो कि भगवान का रूप नहीं मानते, निराकार मानते और उसमें लय हो जाना चाहते, अपनी आत्मा का सर्वनाश कर देना चाहते।
अच्छा,
ये लोग बल्कि अपराध हैं।
अच्छा,
और जो लोग मुक्ति तो चाहते हैं किंतु भागवत पढ़ते हैं,
अच्छा
उसके प्रति आदर है, कृष्ण समाज जहाँ कीर्तन करता है वहाँ पर जाते हैं,
अच्छा
दिन हूँ करके सुनते हैं।
अच्छा,
ये लोग सत्संग में भगवान की भक्ति पा करके ऊपर उठ जाएंगे। ये इस ज्ञानी के लिए नहीं कहा गया, पहले वाले ज्ञानी के लिए।
अच्छा,
जैसे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सेवति न कांक्षति समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। इसका अर्थ यह है जो कि ज्ञानी हो जाते हैं बहुत उच्च कोटि के,
तो ये देखते हैं कि संसार तो एक तरह से मिथ्या है। इनकी कोई चीज चाहे क्यों, इसलिए कोई भी आकांक्षा नहीं रह जाती, न सोचती
न
कांक्षा, कोई आकांक्षा नहीं करते कि संसार की कोई वस्तु मिल जाए, और न सोचती शोक नहीं करते कोई चीज आकर के नष्ट हो गई, लड़का मर गया कि कुछ हो गया, धन संपत्ति नष्ट हो गई, इसके लिए शोक भी नहीं करते। और सब समय प्रसन्न रहता है, सब समय प्रसन्न रहता है, न सोचते
कांक्षा,
समस्त प्राणियों में, गधे में, कुकुर में, हाथी में, गाय में, मनुष्य में, देवता में, गंधर्व में, सब में देखता कि वही आत्मा और परमात्मा है, इसे सबसे प्रति संभव होता है, ये सभी भगवत दास
हैं। ये भ्रम भूत क्यों कहा है? ऐसी आत्माओं को भ्रम भूत,
इसी को ब्रह्म
विश्लेषण दिया ना उसके,
ब्रह्म को जानने वाला,
ये चार जो उसको विश्लेषण दिया,
भूत भूत माने होता है उसमें प्रवेश करने वाला, जिसमें ये सब आ जाता है, किन में अपने को समझने लगता है, प्रभु को किन में समझना लगता है, तो ये ब्रह्म हो गया। अब यहाँ से
विनाशशील भौतिक पदार्थों से निकट होके वो अब किन में ब्रह्म में प्रवेश कर गया, ये ब्रह्म
कर नहीं
कर नहीं,
अभी जन्म मृत्यु से वो दोनों को समान समझने लगता, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस में बराबर समझ,
समान
दोनों समान है। एक आदमी आपको हीरे का टुकड़ा दिया और एक आदमी ने आपको कोई बीस का लड्डू दे दिया, दोनों क्या चीज है? परमार्थ की दृष्टि से दोनों मिट्टी है, इससे हमारा कोई लाभ नहीं है, हानि नहीं है, ठीक है, बस इतना ही सर, जरा बीस के खाने से मर जाऊंगा तो ये भजन नहीं होगा, ये तो इसलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा शांति समा सर्वेश मद भक्ति लभते, ऐसे व्यक्ति को यदि भगवान के भक्तों का संग हो गया तो उसको पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति हो जाएगा, और जिनको नहीं है जो अपराध कर रहे हैं, भगवान के नाम काम में कुछ नहीं,
सही है,
भागवत में पढ़ने से क्या होता है,
क्या होता है राजमार्ग,
निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, हरिद्वार में रहो, वृंदावन में रहने की क्या जरूरत, हरिनाम करने से कुछ नहीं होगा, समाधि लगा करके हम ब्रह्मास्मि ऐसा, तो ये लोग नामा पराधी वैष्णव पराधी भगवान के चरण में।
क्या महाराज जी वैष्णव इन्हीं जड़ इंद्रियों से इन इंद्रियों को चिन्मय बना सकता है?
बनाने की जरूरत क्या है जब उसको चिन्मय है?
अच्छा, यानी
यदि हमारे अंदर में, इसके अंदर में प्रभु का सुंदर कृष्ण का रूप है,
अच्छा,
राधा जी के साथ में वर्तमान,
और
हमारा उसी के अनुरूप गोपी का शरीर है या उनके दास दासी का स्वरूप है, तो ये जड़ शरीर को चिन्मय होने की क्या जरूरत है?
अच्छा,
ये हट जाएगा वो आ जाएगा,
अच्छा
नहीं समझा?
समझ गया,
जैसे
हाँ,
एक कपड़ा है,
हाँ,
उसके अंदर में एक घड़ी है,
अच्छा
ना? घड़ी इसमें ठीक चल रही है,
ठीक,
कोई कहता है कि ये कपड़ा ही घड़ी हो जाएगा,
हाँ, ऐसा नहीं
ना? हाँ, क्या जरूरत है? उसके अंदर में कपड़ा हटा तो घड़ी है,
सही
है। अच्छा एक बात और समझ, अभी जैसे यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि हमारा यही शरीर चिन्मय हो जाए,
ठीक है,
वो बुरा हो गया, दांत टूट गए, झोली पड़ गई, और चेहरा कुरूप हो गया,
अच्छा,
और बहुत मलिन दशा हो गई, तो उसको चिन्मय बना लो तो भगवान के पास में जाकर के क्या करेगा? दाढ़ी बड़ी हुई और किसी ने यहाँ सब पर थोड़ा सा चोट लगा करके काट दिया, तो उसको चिन्मय करने की क्या जरूरत?
क्या जरूरत है?
उसके अंदर में तो चिन्मय है ही है, इसको हटाने की चेष्टा करो,
अच्छा,
ये जड़ को चिन्मय मत बनाओ, ऐसा नहीं होगा, चिन्मय चिन्मय है, जड़ जड़ है, ये पंच भौतिक शरीर है, ये पांचों भूतों में मिल करके ये दूर हो जाएगा, इसमें ये सुंदर सत्ता आत्मा की है, भगवान की है, वो प्रकाशित
होगा। अच्छा मंत्री, अच्छा,
तो भगवान नहीं करते, उनका नाम ही वैसा करा देता
है। अच्छा, नाम करा देता है,
भगवान को ब्लेम मत देना, भक्ति का ऐसा स्वरूप नहीं है, उसी से संबंध बना, तो बकरे की पालती किसको, बकरा किसको कहते हैं? दिन रात बकरी के साथ में इधर उधर भोगों में लिप्त रहना और मैं आना सब, तो ये उसका मंस जो खाएगा वैसा ही बुरेगा, मछली का जो मांस खाएगा वो तांत्रिक उसमें भी वैसा ही आएगा, शुद्ध सात्विक वस्तु खाने से भगवान को भोग दे करके निर्गुण होकर के इसमें शक्ति का संचार होता है, उसके खाने से धीरे धीरे ऐसा मन उसका तैयार होता है जो बुरे कर्मों में नहीं लगता उसको सब समय अशांति नहीं होती, शांति नहीं रहता है और भगवान का भजन करके आगे बढ़ जाता है, उसको एक ऊपर का बल देता है। ये त्याग वस्तु में एक ऐसी काम मुक्ता है, यदि अधिक आदमी खाया तो उसको अपने काम को रोक नहीं सकता। दवा एक अलग चीज है, वो तो बीच बीच सांप का भी उसको शोधन करके उसको लेते हैं, वो तो दूसरी चीज है। जैसे कि लहसुन है
उसी औषध में दवाई बनता है,
दवाई बन करके बना करके यज्ञिया पास इत्यादि। जैसे आपको सर्दी खांसी हुई, आपने क्या किया, आपको दूर हो गया सर्दी खांसी हुई, अब उसके बाद में फिर यदि आपने उसका सेवन किया तो वही रोग होगा जो आपको जो दूर किया। नहीं समझे,
समझ गए मालिक, जो जो दवा है वही वो फिर
बना देगी। इसलिए होम्योपैथिक में जो औषधि दे दिया उसे रोग हो गया, ठीक, कहेंगे अब इसको बंद कर दो।
सिमिलर सिमिलिमम बोलते
हैं,
सिमिलिमम बोलते
हैं। इसी तरह से जो कोई भी चीज है, मान लीजिए जैसे आप ये सब चीज का सेवन करते हैं तो आपको रोग के लिए तो किया ठीक, और इसके बाद भी इसको सेवन करने लगे तो वही आपको लिए रोग का कारण। हमको ऐसा करना है कि हम हमारे अंदर में तामसिक गुण है वो दूर है, लोगों से लड़ने झगड़ने काटने मरने मारने ये सब चीजें, और सात्विक गुण है लोगों के प्रति दया भाव, चित्त शांत रहे, हृदय में सही सुनता रहे, इसे आपको भगवत भजन में फल मिलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने प्राचीन काल से ऐसी व्यवस्था है। अच्छा मान लीजिए दूसरी बात, एक आदमी मछली को काटता है, मछलियां सम्मानित क्यों करके तुम्हें काटेंगी, जरूर बदला लेंगी। आप जिन जिन चीजों का मांस खाते हैं वो फिर रूप धारण करके आपको उसी रूप में मारेंगे जैसे आपने मांस माने होता है मांस खा दो, जिसको हम अभी मार करके खा रहे हैं वो भी हमको खाएंगे, रिएक्शन जरूर होगा। तो क्यों नहीं, ये चावल है, रोटी है, सब्जी है, भगवान ने दिया है, दूध दिया है और सब चीजें दी, क्यों नहीं इसका हम सेवन करके और वही भगवान को देकर के सेवन करें जो हमारी बुद्धि वृत्ति ठीक रहे।
तो वो होते हैं विष होते हैं, अलग अलग विष होते हैं, उन्होंने वहाँ पे हमारे लिए
एनालिसिस किया। ये अमेरिका में रहता है, बहुत वहाँ पर रिसर्च कर रहा है, वहाँ गवर्नमेंट से इनको काफी रुपए मिलते हैं 30,000 ना 35,000 अभी इस स्थिति में, और लेबोरेटरी में वहाँ पर ये किया गया है, तो उसकी तो बात मान लेंगे, हम साधु संतों की बात कोई नहीं मानते क्योंकि लेबोरेटरी में आई है ना और वो आ जा रही है और हम लोगों को लाखों कोटी वर्ष पहले से ये बतला।
अब वहाँ पे अब वो लोग कहते हैं कि अब जो गाय का गोबर होता है उसमें बड़ी तरह गुण होते हैं,
वो बम रोक देता हमारा, हाइड्रोजन बम रोक देता है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक बुक निकाली इसके बाद। अच्छा इसलिए प्राचीन बातों को लेकर के चलना चाहिए, प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट गांजा भांग अफीम चाय चूरू काफी ये सब बीच है, इनको निकाल करके दूर किया जाए, हृदय सात्विक होगा, भजन करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप करने लग जाएगा।
वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन् समनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोष्मि। भक्त्या विहीनापराधलक्षे क्षिप्तास्तु कामादि तरंगमध्ये कृपामयीं स्वां शरणं प्रपन्ना बिन्दे नमस्ते चरणा। भजामि राधामरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। अभी श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने दसम स्कंध की कथा समाप्त कर एकादश स्कंध में इन्होंने प्रवेश किया। दशम स्कंद की कथा ही मूल है। कृष्ण के जन्म से लेकर और द्वारका में अंतक ध्यान होने के बीच में जितनी प्रकार की लीलाएं हैं, यही इन्हीं कथाओं का लोग स्मरण करते हैं। बाकी सब जितनी हैं वो त्याग वैराग्य की शिक्षा के लिए, अथवा ये भी हो सकता है कि सब उनकी पुष्टि के लिए है। दशम स्कंद की लीला कथाओं की पुष्टि के लिए, इसलिए पहले नौ स्कंध तक की कथा अच्छी तरह से सुनी जाए तब दशम स्कंद को श्रवण किया जाए। और दशम स्कंद को कैसे श्रवण किया जाए इसके लिए उसका सार तत्व विवेचन एकादश स्कंद में हुआ है। कैसा हम लोग होने पर भागवत में जो कृष्ण प्रेम बतलाया गया, गोपियों का प्रेम, यशोदा जी का प्रेम, यही भागवत का मूल प्रयोजन है। ऐसा ही प्रेम हमको चाहिए, किंतु यह प्रेम कैसे मिलेगा उसके लिए साधन होना चाहिए। वो साधन दशम एकादश स्कंद में वो सब वर्णन किए गए। अभी नौ जोगेंद्र के उपाख्यान से इन्होंने संक्षेप में कुछ प्रस्तुत किया। नारद जी आए वसुदेव जी के घर पर, आकाश मार्ग से आ रहे थे। लोगों ने देखा ये दूसरा सूर्य कहां से आ रहा। निकट जब आया तो देखा कि ये तो मनुष्य आकृति है, और जब उतर